कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंद युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
बाहर अभी उजाला है, हल्का हल्का उजाला, जो अभी थोड़ी देर में अंधेरे की शक लेना शुरू कर देगा। माँ रसोई में अब भी कुछ खटपट कर रही है, जबकि उसे अच्छी तरह पता है कि दोनों सूटकेस और बैग पैक हो चुके हैं और अब कोई चीज़ रखने की जगह नहीं बची है। वह कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठा है। सामने अभिजीत पलंग पर बैठा है। पापा दरवाजे पर टहल रहे हैं और पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। वह कभी बाहर की तरफ देखता है, कभी अभिजीत की तरफ और कभी किचन की तरफ। सभी मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। घड़ी की सुइयों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर एक निश्चित जगह पर पहुंच जाना भी कितनी उदास घटना है और कितना थका देने वाला है यह इंतजार। पापा बाहर टहलते टहलते ही उसे बीच बीच में देख ले रहे हैं, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो कि वह इसी घर में उसी हत्थे टूटी कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर पर अंदर आ जाते हैं। विक्रांत का पता और फोन नंबर कहाँ रखा है? डायरी में वह जैकेट की जेब थपथपाता है। कहीं दूसरी जगह भी लिख लो, अगर ये डायरी खो गई तो? थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर बाहर जाकर टहलने लगते। माँ एक डिब्बे में कुछ लेकर आती है।
इसे बैग की साइड वाली पॉकेट में जगह बनाकर रख लो।
क्या है ये? वह डिब्बे को बिना थामे पूछता है।
कुछ नहीं, रास्ते में खाने के लिए मठरियाँ।
माँ मैंने बताया था ना कि प्लेन में खाना मिलता है। वह झुंझला जाता है।
पर ये खाना थोड़े ही है, थोड़ी थोड़ी देर पर निकाल कर खाते रहना।
माँ थोड़ी सहम सी जाती है। माँ तुम भी। अभिजीत उठकर माँ के हाथ से डिब्बा ले लेता है। लाओ आंटी मैं रख देता हूँ, दो चार अपनी जेब में और बाकी बैग।
हाँ बेटा ले रख दे।
पापा फिर अंदर जाते हैं। बेटा वहाँ जाकर अपना हिसाब किताब देखकर मुझे फोन कर देना, और पैसों की जरूरत होगी तो बता देना। पढ़ाई में ध्यान लगाना, पैसों की फिक्र मत करना। उसे पता है पापा की आदत है ये, जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है उसे ही सबसे ज्यादा उपलब्ध दिखाने की कोशिश करते हैं। अभिजीत चुपचाप बैठा मठरियां खा रहा है, बीच बीच में उसे देख ले रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। ये इतना चुप तो कभी नहीं रहता। मठरियां खाने में ऐसे जुटा है जैसे मठरियां खाना दुनिया का सबसे जरूरी काम है और पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया जाना एक मामूली सी बात हो। अभी 3 घंटे बाद वह फ्लाइट में होगा, सभी से दूर, माँ पापा से, दोस्तों से, इस मोहल्ले से, इस शहर से और इस देश से भी। थोड़ी देर में अनुज भी आ जाता है। सब तैयार है ना? वह अभिजीत से पूछता है। हाँ हाँ सब तैयार है, बस निकलते हैं। अभिजीत इत्मीनान से एक मठरी निकालकर अनुज की ओर बढ़ा देता है। रोज का दिन होता तो अनुज इतनी शांति से एक मठरी लेकर खाने लगता, अभिजीत के हाथ से दूसरी भी छीन लेता और अभिजीत उसे छीनने के लिए उसकी टांगों में हाथ डालकर गिरा देता और मठरियां छीनने लगता। और माँ हमेशा की तरह दोनों को देखकर कहती,
ओहो लड़ो मत बेटा, अभी और भी मठरियां बची हुई हैं।
मगर अनुज एक मठरी आराम से खा रहा है। माँ सोफे पर बैठकर एक टक उसकी ओर देख रही है। वह मुस्कुरा देता है। क्या है माँ ऐसे क्यों देख रही हो?
अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना और रात को दूध जरूर पीना और हाँ, फोन करते रहना, पढ़ाई पर ध्यान देना और चिट्ठी जरूर डालते रहना।
अरे आंटी, अब कौन चिट्ठी लिखता है? यह हर 2-3 दिन पर ईमेल करता रहेगा और हम आकर इसका हाल चाल आपको बता दिया करेंगे, अनुज कहता है।
जुग जुग जियो बेटा।
वह अनुज की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखता है। अनुज भी कुछ बताने के लिए उसकी तरफ देख रहा है, पर माँ की उपस्थिति से दोनों खामोश हैं। वह अभिजीत की ओर देखता है। अभिजीत उसकी आंखें का इशारा समझ जाता है और उठकर माँ के पास चला जाता है। आंटी, वह नमकीन वाली गुजिया दो ना।
जा बेटा, उस सफेद डिब्बे में है, निकाल ले। अच्छा अच्छा रुको, लाती हूँ।
माँ धीरे से उठकर रसोई की तरफ चली जाती है। अनुज लपक कर उसके पास पहुंचता है। क्या हुआ? वह बेचैन सा दिख रहा है। वह सीधा एयरपोर्ट आएगी, अनुज बताता है। या यहाँ आ जाती तो मैं नीचे मिल रहा था, एयरपोर्ट तो पापा भी होंगे, क्या बोलकर परिचय कराऊंगा उसका। बोल देना दोस्त है, अनुज राय देता है। हाँ, पर फेयरवेल किसने ले पाएगा पापा के सामने? अभिजीत मुस्कुराता हुआ कहता है। अरे नहीं यार, वो बात नहीं, अभी तक माँ पापा को कुछ नहीं बताया, तो अब जाते वक्त बाद में बताऊंगा, सीधे फाइनल डिसीजन के समय। वह कुछ सोच में पड़ जाता है। सुन, तू पापा को एयरपोर्ट चलने के लिए मना कर दे, कुछ भी बोलकर समझा ले, बोल दे कि दो लोग तो जा ही रहे हैं। अभिजीत आइडिया देता है। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा, वह सोचते हुए बुदबुदाता है। माँ गुजिया रखकर पापा के पास चली गई। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं या अकेले सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने का अभ्यास। पापा फिर अंदर आते हैं। ठंड से बचकर रहना, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, हमेशा मफलर लगा कर रहना, ठंड कानों पर सबसे पहले आक्रमण करती है, कान हमेशा ढके होने चाहिए, ये नहीं कि फैशन में बाल ना बिगड़े इसलिए मफलर ही ना लगाओ। सो विवेक से काम लेना, वहाँ कोई देखने नहीं आएगा, वह तुम्हारा घर नहीं मेलबर्न है। पापा पिछले कुछ दिनों से हर बात में घुमा फिरा कर मेलबर्न का जिक्र जरूर ले आते हैं, जैसे पूरी तस्दीक कर लेना चाहते हूँ कि ये वाकई इतनी दूर जा रहा है। पापा बाहर जाकर फिर टहलने लगते हैं। माँ बाहर कुर्सी पर बैठी। जी, इतनी बातों में वह सिर्फ एक ही शब्द बोलता है जो बाहर पसर रहे अंधेरे में गुम हो जाता है। आज रोज इतनी ठंड नहीं है, अनुज कहता है। हाँ, बल्कि मुझे तो गर्मी लग रही है, वह कहता है। वह तो लगेगी ही, तूने स्वेटर और जैकेट दोनों पहन रखी हैं। मुझे देख, अभिजीत अपना हाफ स्वेटर दिखाता है। अरे यार, पापा ने जबरदस्ती, तो पापा के सपूत अब तो उतार दे। पापा बाहर हैं, उतार कर जैकेट की चेन बंद कर ले, उन्हें क्या पता चलेगा, अभिजीत राय देता है। वह जैकेट उतार कर स्वेटर उतार देता है, फिर जैकेट पहनकर उसकी चेन बंद कर लेता है। मैं सोच रहा था ये स्वेटर ना ले जाऊं, वह स्वेटर की तह करते हुए कहता है। सही सोच रहा है, इस पुराने स्वेटर को ले जाकर क्या करेगा, 3 दिन अच्छे स्वेटर तो हैं तेरे पास, अनुज समझाता है। मगर पापा देख लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, वह खुद स्वेटर मेरे लिए नेपाल से लाए थे। वह हिचकिचाता है। अभी नहीं देखेंगे ना, बाद में देखेंगे तो सोचेंगे गलती से छूट गया, अनुज स्वेटर तह करके तकिए के नीचे रख देता है। फिर तीनों अचानक चुप हो जाते हैं। अनुज और अभिजीत दोनों उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। कुछ कह रही थी? वह भी मुस्कुराता है। नहीं, कुछ खास नहीं, बस यही कि पहुंचते ही अपना पोस्टल एड्रेस उसे मेल कर देना, जो स्वेटर तुम्हारे लिए बुन रही है बस पूरा ही होने वाला है, उसे कोरियर कर देगी। कह रही थी बहुत सारी बातें हैं, जो तुमसे एयरपोर्ट पर करेगी। मैंने कहा मुझे बता दे, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो नाराज होने लगे। अनुज कुटिल मुस्कान मुस्कुराता है। साले तुझसे क्यों बताएगी, वो बातें तू सीमा से क्यों नहीं करता। वह भी मुस्कुराता है। या वो ना तो मुझे घास डालती है ना मेरी डाली घास खाती है, उससे क्या बातें करूं, मुझे तो तेरी कविता ही पसंद है। अनुज ढीठता से हंसता हुआ कहता है। वह फिर मुस्कुराता है। वह जानता है और कोई दिन रहता तो सीमा का नाम सुनते ही अनुज दिल पर हाथ रखकर सारी बातें धीरे धीरे नाटक के अंदाज में कराहते हुए कहता। वह भी उसकी जबान से कविता का नाम सुनते ही उस पर लातें चलाता। पर आज की बात दूसरी है। आज उसके पास वक्त नहीं। आधे घंटे के भीतर वे एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। उससे पहले यारों के बीच होने वाली बेवकूफियों को रिवाइंड करना अच्छा लग रहा है। पापा माँ के साथ फिर अंदर आते हैं। अब निकलते हैं बेटा, कहीं पहुंचने में देर ना हो जाए। अरे अंकल अभी बहुत टाइम है, अनुज कहता है। अरे भाई ट्रैफिक जैम का कोई भरोसा है, कभी लेट डरा सकता है। माँ भीगी आंखों से उसे देखती है।
तेरे जाने के बाद घर एकदम सूना हो जाएगा,
लगता है माँ रो देगी। कमान आंटी, हम सूना होने देंगे तब ना। अभिजीत माँ के कंधे पर हाथ रखता है। माँ उसका गाल थपथपा देती है। चलो बेटा चलो, अब निकलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। पापा पास आकर खड़े हो जाते हैं। उसे पापा पर इसी बात से गुस्सा आता है। जिस बात को एक बार मुंह से निकाल देते हैं उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। चलो बेटा आओ अनुज, उसके सोचने भर में पापा एक बार और अपनी बात दोहरा देते हैं और बैग उठाने का उपक्रम करते हैं। अरे अंकल आप कहाँ परेशान होंगे, हम हैं ना, आप आराम कीजिए, अनुज यह कहता हुआ बैग उठा लेता है। अभिजीत दोनों सूटकेस उठा लेता है। अरे नहीं बेटा मैं भी चलता हूँ, पापा परेशान दिखने लगे हैं। छोड़िए अंकल, डॉक्टर ने वैसे भी आपको ज़्यादा दौड़ने धूपने से मना किया है ना, आप यहीं रहिए, हम हैं ना, कहता हुआ अभिजीत बाहर निकल जाता है। पीछे पीछे अनुज भी। डॉक्टर ने दौड़ने को मना किया है भाई, मुझे दौड़ते हुए थोड़ी ही चलना है, चलता हूँ मैं भी। पापा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उदास हंसी हंसते हैं, जो इस उदास शाम को और भी उदास कर जाती है। रहने दीजिए पापा, आप बेकार परेशान होंगे। वह पापा के पैर छूता है, फिर माँ के।
बेटा माता के पैर छू लो,
माँ दुर्गा के शीशे में मढ़ाई गई तस्वीर की ओर इशारा करती है। वह आगे बढ़कर दुर्गा की तस्वीर को प्रणाम करता है, जिसके शीशे में पापा की उदास खड़ी परछाई दिखाई पड़ती है। वह बाहर आ जाता है। पापा उम्मीद भरी आंखों से उसे देखते रहते हैं। माँ उसे दही खिलाती है। वह जल्दी से दही खाकर निकल जाता है। तीनों सड़क से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं। वह खुद को ऐसे मकाम पर पा रहा है जहाँ एक वाजिब खुशी का एहसास दिल में इसलिए नहीं उमड़ पा रहा क्योंकि छूट जाने का गम उस पर हावी होता जा रहा है। अपने दोस्त, अपनी जगह, अपना माहौल, सब, एक नई दुनिया में जाने की खुशी पता नहीं क्यों इतनी शिद्दत से महसूस नहीं हो पा रही। करीब 100 मीटर चलने के बाद अनुज सिगरेट जलाकर दोनों को एक एक थमा देता है। दोनों सिगरेट मुकते हुए ऑटो स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं। आज सुबह मनु के घर पुलिस की रेड पड़ी, अनु सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ बताता है। हाँ उसके डैडी बिजनेस के आड़ में कुछ गलत धंधा करते थे, अभिजीत कहता है। उसका मन सुबह से भारी है। वह अपनी बीती जिंदगी और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचता जा रहा है। इन दोनों की बातें सुनकर उसका मन डूबता हुआ सा लग रहा है। वे भी तो कितने अकेले हो जाएंगे, ये कितना मिस करेगा इनको। अच्छा सुन, वहाँ की लड़कियाँ बड़ी फ्रैंक होती हैं, दो चार पढ़ जाएं तो बताना, हम भी IELTC ट्राई कर लेंगे, क्यों अभी? अनुज खी-खी करके हंसने लगता है। वह भी मुस्करा देता है। अभिजीत एक बार उसकी तरफ देख भर लेता है। वे कितनी सफाई से दिल दुखाने वाली बातें नहीं करना चाहते। मैं वहाँ तुम लोगों को बहुत मिस करूँगा, वह भरी आवाज़ में कहता है। अभिजीत उसकी हथेली अपनी हथेली में पकड़ कर दबा देता है। अरे कभी कभी उसे भी मिस कर लेना जो अपना प्यार स्वेटर की शक्ल में भेजने वाली है। अनुज अपनी आदत के अनुसार भावुक होने के बावजूद बात को हंसी में उड़ा देता है। अंकल आ रहे हैं पीछे। पीछे पलटने से पहले सिगरेट फेंक दो, अभिजीत धीरे से फुसफुसाता है। वह सिगरेट फेंक कर पलटता है। पापा लगभग दौड़ते हुए आ रहे हैं। वह आगे बढ़कर सड़क पार करता है और उनके पास पहुंचता है। क्या बात है पापा, आपके लिए दौड़ना नुकसानदायक है, आप जानते हैं। फिर भी वह हल्का सा गुस्सा दिखाता है। उसे पहली बार याद आता है कि उसके जाने के बाद पापा का उतावलापन नियंत्रित करने वाला कोई नहीं रहेगा और वह उतावली में अपना नुकसान करते रहेंगे। अरे अरे तुम ये स्वेटर भुलाए थे तकिए के नीचे, तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुम्हें दे आऊं, इसलिए दौड़ना पड़ा। लो लो बैग में रख लो, पापा टकती सांसों के बीच बोलते हैं और उसे देखते रहते हैं। उसे अचानक पापा के ऊपर तरस आने लगता है, फिर अपने ऊपर, फिर पापा के ऊपर प्यार आने लगता है और अपने ऊपर गुस्सा। स्थिर गंभीर आंखों और लंबी सांसों के बीच पापा ने कितनी चिंताएं छिपा रखी हैं। उसका मन करता है कि अपने दिल में पापा के लिए छिपा सारा प्यार जाहिर कर दे। क्या पता फिर पापा भी जाते समय उससे पैर छुआने की जगह उसे गले लगा ले। वे डूबती आंखों से और कांपते हाथों से स्वेटर हाथ में लिए थोड़ी देर खड़ा रहता है और पापा को देखता रहता है। सारी जरूरी चीजें रख ली है ना, ये याद रखना कि हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, सही रास्ता कठिन हो या लंबा हमेशा उसे ही चुनना, शरीर और पढ़ाई दोनों पर ध्यान देना और देख पैसे की चिंता मत करना। चलो अब जाओ, देखो अनुज ने ऑटो तय कर लिया है, बुला रहा है तुम्हें। पापा सामान्य दिखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, वे भरी आंखों के साथ पलटता है। दो तीन कदम चलने पर पापा की आवाज़ सुनाई देती है। कहो तो मैं भी चलूं, वैसे भी घर पर बैठा ही रहूंगा। पापा की धीमी आवाज़ जैसे कहूं और ना कहूं के संशय के बीच से निकल कर आ रही है। जमाने भर का दर्द और निवेदन समेटे अपनी आवाज़ को उन्होंने इस तरह जाहिर करना चाहा है जैसे उन्होंने बहुत सामान्य और छोटी सी बात कही है और इसके न माने जाने पर भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
हिंदी को इंटरनेट की भाषा बनाने और कला की हर विधा से जोड़ने का हमने उठाया है बीड़ा। क्या आप हैं हमारे साथ? आज ही लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग, युवा उम्मीदों और प्रतिभाओं का हिंदुस्तानी मंच।